ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। न अनुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् ना कभी नहीं। अनुद्वेष्टि ईर्ष्यालो कलिम कली को सम्राट
सम्राट
सारंग मधुमक्खियों की भांति यथार्थवादी इव सदृश सारभुक सार को ग्रहण करने वाला कुशलानी शुभ वस्तुएं आशु शीघ्र सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं न कभी नहीं इतराणि अशुभ कृतानि किए जाकर यत जितना। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में शुभ वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। तात्पर्य, कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं, अतएव भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी कार्य को वास्तव में करता नहीं, तब तक वह उस पापपूर्ण कर्म का भागी नहीं होता। अन्य युगों में पापपूर्ण कर्म की कल्पना से ही मनुष्य कर्म का भागी बन जाता था। इसके विरुद्ध इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतएव अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया और साथ ही उन्होंने कली के लिए स्थान नियुक्त करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंद्य कृत्य विद्यमान हैं, तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ हैं। मनुष्य मात्र भगवान नाम कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और जनता को कली के पास से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग की जय मानते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही यह कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर हृदय में बंदी बन जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ हैं और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा। ओम अज्ञान तिमिरान नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में शुभ वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद 18वें अध्याय श्लोक क्रमांक 7 लिए हैं। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित जैसे उदाहरण हैं जिनके वजह से हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा जान सके हैं। यदि महाराज परीक्षित उन 7 दिनों में श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते सुखदेव गोस्वामी के मुख से, तो आज हमें श्रीमद् भागवत के पाठ करने का भी अवसर नहीं मिलता, उसे अपने जीवन में उतारना तो दूर की बात है। और इसलिए परीक्षित महाराज जैसे महानुभाव वो अपने उदाहरण से हमें बताते हैं कि केवल हमें श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं करना बल्कि श्रीमद् भागवत की सेवा कैसे करनी है। इसलिए श्रीमद् भागवत की सेवा होती है जब हम श्रीमद् भागवत में दिए गए जो भगवान के आदेश हैं, भक्तों के जो गुण हैं, जब उन्हें हम अपने जीवन में उतारते हैं। श्रीमद् भागवत में आकर भाग लेना, सुनना, ये भी भागवत की सेवा है, परंतु ये पूर्ण रूपेण सेवा नहीं है श्रीमद् भागवत की। और परीक्षित महाराज इन्होंने श्रीमद् भागवत सुनने से पहले ही श्रीमद् भागवत में दिए गए भक्तों के गुण को अपने जीवन में उतार लिया था। जैसे कि इस अध्याय का शीर्षक है परीक्षित महाराज को उस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया। और परीक्षित महाराज के पास सारी शक्तियां थी कि वो इस श्राप का प्रतिकार कर सके, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। भौतिक रूप से परीक्षित महाराज विश्व के सम्राट, और आध्यात्मिक रूप से परीक्षित महाराज पांडवों के वंशज भगवान श्री कृष्ण द्वारा रक्षित, उनके माता के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अपनी माता के गर्भ में जिसे हुआ है, ऐसे व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के विषय में हम क्या कह सकते हैं। तो भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परीक्षित महाराज पूर्ण प्रकार से सक्षम थे इस शाप को विफल करने के लिए, या इससे ज्यादा उस श्रृंगी को दंडित करने के लिए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि जैसे कि यहां पर परीक्षित महाराज के विषय में कहा गया है कि नानु द्वेष्टि, उनके अंदर किसी के भी लिए किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। ये बहुत बड़ा गुण है कि किसी के भी लिए किसी भी प्रकार का द्वेष न होना, और वो भी किसी भी समय। कलयुग में हम देखते हैं कि लोगों से द्वेष करना ये एक स्वाभाविक सा गुण हो गया है, और कई बार स्वयं को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति में खोट निकालना, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष करना, इसे लोग कहते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं। जैसे कि परीक्षित महाराज के पास सारे कारण थे कि वो अपनी उंगली किसी दूसरे की तरफ दिखाए, जैसे कि ये ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी की तरफ या फिर भगवान की तरफ या काल की तरफ या इस समाज की तरफ। परंतु परीक्षित महाराज के विषय में कहा गया है नानुद्वेष्टि, उनके अंदर कोई प्रकार की ईर्ष्या नहीं, और वो भी किसके संदर्भ में कहा गया है, कली। अब देखिए, जब कोई बहुत बड़ा संत महात्मा जब उससे हम संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ उस प्रकार के गुण दिखते हैं, परंतु हमारे असली गुण तब दिखते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसमें बहुत से दोष हैं। जो व्यक्ति दोषों से भरा हुआ है, कोई पापी है, कोई दुराचारी है, कोई अधम व्यक्ति है, द्वेषी है, अनर्थों से भरा, ऐसे व्यक्ति के जब हम संपर्क में आते हैं तब हमारी असली पहचान सामने आती है कि हम भक्ति में कितने गहरे हैं, कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो महाराज परीक्षित, इनके अंदर नानुद्वेष्टि, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं, परंतु किसके संदर्भ में कह रहे हैं, कलिम सम्राट, मूर्तिमान कलयुग, कलिम सम्राट के सामने महाराज परीक्षित बिल्कुल भी अपनी ईर्ष्या नहीं, अपना द्वेष नहीं दिखा रहे, बल्कि महाराज परीक्षित मूर्तिमान कली में गुण देख रहे हैं। अब देखिए, हम लोग जो कलयुग में हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें तो गुण देखना है क्योंकि रहना है यहां पर। परंतु परीक्षित महाराज को कलयुग में नहीं रहना था, वो तो भगवान के धाम में अब 7 दिन में जाने वाले हैं। तो कई बार हम किसी बुरी वस्तु में भी गुण देखते हैं क्योंकि कोई चारा नहीं। यदि परिवार का कोई सदस्य जिसके अंदर दुर्गुण है, यदि किसी के साथ विवाह हो गया है जिसके अंदर बाद में पता लगा कि बहुत से दुर्गुण, तो फिर अब जीवन बिताना है तो चलो कुछ गुण देखें ताकि थोड़ी बहुत तो तसल्ली हो। तो यदि कोई हमसे पूछे कि आप कलयुग में हैं तो कलयुग के विषय में आप क्या कहना चाहोगे, तो हम तो कहेंगे भाई हमें तो रहना है तो इसलिए कुछ गुण देखना होगा, अस्ति एक महान गुण है। परंतु परीक्षित महाराज को कोई आवश्यकता नहीं थी कलयुग में कोई गुण भी देखने की, परंतु फिर भी परीक्षित महाराज गुण देख रहे हैं, और वो भी कैसा गुण देख रहे हैं कि पिछले युगों में जब कोई व्यक्ति किसी पाप कृत्य के विषय में सोचता भी तो वो पाप का भागीदारी हो जाता, केवल सोचने मात्र से। इस बात पर सोचिए कि केवल पाप के विषय में सोचने से व्यक्ति पाप का भागीदारी हो जाता है। और कलयुग में क्या गुण परीक्षित महाराज यहां पर देख रहे हैं कि पुण्य कृत्य, पुण्य कर्म के विषय में सोचने मात्र से उस पुण्य का भागीदारी वो व्यक्ति हो जाता है, करने की भी आवश्यकता नहीं, केवल सोचने मात्र से। इसलिए परीक्षित महाराज जब ऐसा गुण मूर्तिमान कली में देख रहे हैं तो परीक्षित महाराज को यहां पर कहा गया है सारंग, एक मधुमक्खी। परीक्षित महाराज को मधुमक्खी की तुलना दी गई है। और ये उदाहरण हमने कई बार सुना है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मधुमक्खी के समान होते हैं, क्योंकि मधुमक्खी का गुण क्या है कि मधुमक्खी चाहे कचरे का ढेर हो परंतु मधुमक्खी केवल कोई गुलाब का पुष्प, जैसे यहां पर हमारे कदम के इतने पुष्प आ रहे हैं कदम के पेड़ पर, तो आप देखोगे कि एक कदम के पेड़ के बगल में कचरे का डब्बा भी रखा होता है और देखो कचरे के डब्बे पर कौन मंडराता है और कदम के फूल पर कौन। इस प्रवचन के बाद जाकर देख सकते हैं आप, और देखने की भी आवश्यकता नहीं है, सुनने से ही पता लग जाएगा, आपको पता भी होगा कि कचरे के ढेर पर केवल मक्खियां और सुंदर कदम के पुष्प के ऊपर आप केवल देखोगे मधुमक्खियां। और ये हिंदी का शब्द भी बहुत रोचक है कि उसे मधुमक्खी कहा है, क्योंकि वो ऐसी मक्खी है, मक्खी है मधुमक्खी, वो ऐसी मक्खी है जो केवल मधु की तलाश में रहती है। और मधु भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भी है, तो हमें ऐसी मक्खी बनना है कि जो हर समय मधु की तलाश में रहे। भगवान श्री कृष्ण के गुण को देखे हर जगह पर, और यदि हमारे जीवन में हम श्री मधुसूदन की तलाश में नहीं रहेंगे तो फिर केवल मक्खी, फिर केवल कचरा ढूंढेंगे हम, कचरा। और ऐसा नहीं कि मक्खियां जो होती हैं वो जब कचरा सामने आए तब वो कचरे पर मंडराती है। मक्खियों का गुण क्या है कि मक्खियां घूमती रहती हैं कचरे को ढूंढते हुए, कचरे के आने की प्रतीक्षा नहीं करती मक्खियां। वैसे ही जब मन में दूसरों के प्रति दोष भावना होती है तो वो उस मक्खी के समान है जो ढूंढ ढूंढ कर दोष निकालती है उस व्यक्ति का। एक गांव में एक ये चींटियां होती, चींटियां जो अपना बाम्बी बनाती, उसे बाम्बी कहते हैं, वो छोटा सा पर्वत सा। तो एक गांव के जंगल में ये चींटियां रहा करती थी और इन्होंने, इन चींटियों ने एक नमक की बाम्बी बनाई थी, एक छोटा सा पर्वत नमक का, और नमक पर ये रहती थी। तो इन चींटियों के समुदाय को किसी ने कहा कि अरे आप लोग यहां पर नमक पर अपना निवास स्थान बनाए हैं, जब चींटियों को तो निवास स्थान बनाना चाहिए चीनी के ऊपर। तो इन चींटियों के समुदाय को समाचार मिला कि बगल के गांव में चीनी का ढेर है और एक नहीं बहुत से, तो सारी चींटियां अपने उस नमक के निवास स्थान से निकली अपने नए निवास स्थान पर रहने के लिए। तो जब वहां पर ये सब निकले तो इनमें से एक चींटी, वो जब चीनी के ढेर के ऊपर पहुंची तो उसने बाकी चींटियों से कहा, क्या विशेष है इसमें, इतनी दूर चलकर हम आई, ये तो नमकीन ही स्वाद आ रहा है इसका। तो उसकी बगल वाली चींटी ने कहा, क्योंकि तुमने अब तक नमक को पकड़ के रखा है, तुम हालांकि नमक के पर्वत को छोड़कर यहां पर आई परंतु तुम अब तक नमक के दानों को छोड़ी नहीं है, तो अपने पैरों से इन नमक के दानों को झड़काओ तब जाकर चीनी का आस्वादन होगा। तो कलयुग में बद्ध जीवात्मा की स्थिति भी ऐसी है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चीनी का पर्वत देकर गए हैं, हरिनाम और ये कृष्ण भावनामृत पद्धति के रूप में, परंतु कई बार हमारी स्थिति होती है उन चींटियों की तरह कि इस चीनी के पर्वत पर हैं परंतु नमक के दानों को पकड़े हुए हैं। तो जब तक नमक के दानों को हम झटका कर नहीं फेंकेंगे तब तक चीनी का आस्वादन नहीं हो पाएगा। तो भक्तों के संग में भी रहेंगे तब भी मधुमक्खियों की तरह गुण नहीं आएंगे बल्कि केवल मक्खियों की तरह। हालांकि हम प्रवचन में परीक्षित महाराज जैसे महान भक्तों का उदाहरण तो देते हैं, परंतु यदि हमारे खुद के स्वयं के जीवन में हम यदि परख कर देखें कि क्या परीक्षित महाराज जैसे एक भी गुण मैं अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी कर रहा हूं कि नहीं, इसलिए एक शुद्ध भक्त को भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले इस प्रयास में रहना चाहिए कि मैं मक्खी से मधुमक्खी कैसे बनूं। श्रीमद् भागवत में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि एक शुद्ध भक्त की बुद्धि जो है वो हर समय सद्गुण को देखने में लगी रहती है और भगवान की सेवा में। ये उदाहरण दिया है कि जब शरीर में कोई एक अंग रोगग्रस्त हो जाता है, मानो अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर चोट पहुंची है, नाखून निकल गया और घाव हो गया है, चोट पहुंची है, तो पैर के अंगूठे पर चोट पहुंची है तो उस चोट को ठीक करने के लिए बाकी शरीर के सारे अंग लग जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हाथ बोलते हैं कि जाओ मरो, तुम तो क्या अंगूठा हो। ऐसा नहीं कि आंखें बोलती हैं, अरे दिखने में तुम बहुत बदसूरत दिखते हो, मैं नहीं देखूंगी। पैर के अंगूठे पर चोट पहुंची है तो शरीर के सारे अंग एकजुट होकर उसे ठीक करने में लगते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण भागवत में दिया। उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त देखते हैं कि कोई एक बद्ध जीव भगवान से विमुख होकर तड़प रहा है तो वो सब एकजुट होकर उसे ठीक करने में लगते हैं। ये एक भक्त का दृष्टिकोण। जैसे भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर, उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को मद्रास भेजा प्रचार कार्य शुरू करने के लिए, और कुछ समय बाद इन शिष्यों ने प्रचार वहां पर बढ़ाया इस हद तक कि मंदिर वहां पर गौड़िया मठ खड़ा हो गया और उसके उद्घाटन के लिए उन्होंने भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को न्योता दिया। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर वहां पर जब आए तो बड़े मंदिर का उद्घाटन, भगवान श्री राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा और बहुत बड़ा समारोह, बहुत दिनों तक चलने वाला समारोह आयोजित किया गया। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जैसे ही वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने भक्तों से भेंट की और वहां के जो प्रमुख अध्यक्ष थे उन्होंने भक्ति सिद्धांत को बताया कि रूपरेखा क्या होगी कार्यक्रमों की। परंतु भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर उन्होंने अध्यक्ष से पूछा कि एक भक्त नहीं दिख रहा, मैं सभी भक्तों से मिल लिया परंतु एक ब्रह्मचारी जो कि यहां पर भेजा गया था वो नहीं दिख रहा। तो हुआ क्या था कि वहां पर एक ब्रह्मचारी किसी गलती के वजह से उस ब्रह्मचारी को गौड़िया मठ से निकाल दिया गया था और ये बात को इतना महत्व नहीं दिया गया था और किसी को ध्यान में नहीं था कि ये ब्रह्मचारी नहीं है अब यहां पर। परंतु इतना बड़ा समारोह और ये सब कुछ को दुर्लक्ष करते हुए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने केवल उस भक्त के बारे में पूछा और वो कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसा कोई ब्रह्मचारी नहीं था, साधारण सा। तब फिर उन अध्यक्ष ने उनको बताया कि ऐसी ऐसी उसने गलती की थी जिसके वजह से जाने के लिए कहा गया। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते हैं कि जब तक मुझे पता नहीं लगता कि वो भक्त कहां पर है और जब तक वो वापस नहीं आता तब तक न तो ये समारोह होगा और तब तक न तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा। सोचिए, तब वो पूरा गौड़िया मठ और सभी लोग लग गए ढूंढने के लिए कि वो कहां गया होगा और किसी को पता नहीं। बहुत समय हो चुका था मंदिर से गए हुए उस ब्रह्मचारी को। तो यहां पर बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया था, चीफ गेस्ट इन सबको न्योता दिया था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि ये जो तुमने मंदिर बांधा है इतना बड़ा प्रोजेक्ट किस काम का, यदि तुम एक भक्त को संभाल कर नहीं रख सके। और सभी लोग पूरे मद्रास शहर में घूमने लगे इसे ढूंढने के लिए। तो उनमें से एक भक्त ने कहा कि जब भी किसी की घड़ी खराब हो जाती तो ये ब्रह्मचारी को घड़ी ठीक करने की कला मालूम थी। तो मद्रास में जितने भी घड़ी दुरुस्त करने की दुकान थी उन दुकानों में जाकर चेक किया कि शायद वहां पर तो कहीं पर नहीं मिलेगी और उनमें से एक दुकान पर वो ब्रह्मचारी मिल गए। और फिर उनको, उस ब्रह्मचारी को भक्तों ने कहा कि भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर आपको याद कर रहे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये ब्रह्मचारी रोने लगे केवल जब इतना सुना कि भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर मुझे याद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हां, आपके लिए सारा समारोह रोका गया है। तो उनके आंखों से आंसू रुके नहीं और वो उस दिन के बाद उन्होंने कभी वो गलती नहीं की और कभी भक्तों के संग को छोड़ा नहीं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको कुछ कहा नहीं, कोई प्रवचन नहीं दिया, ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं तुमने जो गलती की, बस केवल इतना पता लगा इस ब्रह्मचारी को कि इतने महान वैष्णव मेरे विषय में सोच रहे हैं, बस केवल इतना जानने मात्र से उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। फिर से ये एक भक्त का दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे कि परीक्षित महाराज यहां पर, वो हालांकि स्वयं तो भगवत धाम जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो बचपन से वो कर रहे हैं वो तो उनसे छीनने वाला कोई नहीं, परंतु इसके बावजूद वो मूर्तिमान कली के विषय में सोच रहे हैं और गुण देख रहे हैं कि कौन सा गुण है मूर्तिमान कली में जिसके कारण मूर्तिमान कली को मैं क्षमा कर सकूं। जैसे कि एक कामुक व्यक्ति इस भौतिक संसार में केवल काम वासना की वस्तु ढूंढता है ना, वैसे ही एक शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार में ढूंढता है कि कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भगवान की भक्ति करने का कण मात्र भी गुण है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए और उन्होंने केवल एक ही चीज पर गौर किया। इतने सारे दुर्गुण उनके सामने थे, सब प्रकार का अधर्म पाप कर्म वहां पर हो रहा, परंतु श्रील प्रभुपाद ने देखा कि एक ही गुण इनके अंदर, और वो था कि ये मेरे पर विश्वास रख रहे हैं। ये सारे हिप्पी, ये सारे अमेरिकी जो आ रहे हैं, इन्हें थोड़ा बहुत स्नेह है मुझसे। और उस चिंगारी को जब श्रील प्रभुपाद ने देखा कि ये छोटी सी चिंगारी इन सब के अंदर है कि मेरे प्रति स्नेह ये रखे हैं, और उस चिंगारी को श्रील प्रभुपाद ने हवा दी और उस चिंगारी को एक प्रज्वलित अग्नि में परिणित कर दिया। तो यदि श्रील प्रभुपाद केवल अमेरिका के दोष देखते तो आज ये इस्कॉन संस्था नहीं होती। और कोई उन्हें गलत नहीं ठहराता दोष देखने के लिए, क्योंकि दोष था, है, परंतु उन सब में वो एक चिंगारी को देख रहे थे। इसलिए इसी अध्याय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है परीक्षित महाराज के संदर्भ में और भगवान के शुद्ध भक्तों के संदर्भ में, कि भगवान के शुद्ध भक्त उनके कैसे गुण होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और जब तक हम साधकों के जीवन में हम इस श्लोक को पूर्ण रूपेण नहीं उतारते तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा असंभव है। कहा गया है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शाप्ता क्षिप्ता हता अपि न यस्य प्रति कुर्वन्ति तद्भक्त प्रभवोपि। पांच गुण बताए गए हैं एक वैष्णव के अंदर, कि पांच स्थितियों में एक वैष्णव कैसे व्यवहार करता है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शाप्ता क्षिप्ता हता, इन पांच स्थितियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहली स्थिति है तिरस्कृता, कि जब किसी वैष्णव का तिरस्कार होता है तो एक तिरस्कृत वैष्णव वो किस प्रकार से इस स्थिति को अपने जीवन में लेता है, कैसा उसका दृष्टिकोण होता है। तिरस्कृत और विप्रलब्धा। विप्रलब्धा कहते हैं कि जब कोई ठगा गया हो, जब किसी के साथ धोखा हुआ हो, उसे कहते हैं विप्रलब्धा। शापता कि जब किसी को शाप मिला हो। क्षिप्ता जब किसी को दुर्लक्ष किया हो। हता जब किसी की जान ली गई हो। सोचिए इससे ज्यादा और क्या होगा, तिरस्कृत होना, ठगा जाना, शाप मिलना, दुर्लक्ष हो जाना और फिर मृत्यु। इसके हम एक एक उदाहरण देखेंगे श्रीमद् भागवत में कि वैष्णव के जीवन में जब ये सारे घटनाएं हुई तो उनका व्यवहार कैसा था। सबसे पहले तिरस्कृता कि जब किसी वैष्णव का तिरस्कार होता है, जैसे कि दक्ष यज्ञ चतुर्थ स्कंद में हम पढ़ते हैं दक्ष यज्ञ, जिसमें महाराज दक्ष वो भगवान शिवजी का तिरस्कार करते हैं और वो भी तिरस्कार ऐसे नहीं कि अकेले में किया हो, भरी सभा में, और उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर, इन सब के सामने दक्ष प्रजापति भगवान शिवजी का तिरस्कार करते हैं और वो भी ऐसे ऐसे शब्द बोलकर। और भगवान शिवजी हैं कौन? वो स्वयं सदाशिव, स्वयं महाविष्णु के एक विस्तारित अंश हैं, गुण अवतार हैं। और दक्ष प्रजापति से क्या संबंध? दक्ष प्रजापति के वो दामाद। सोचिए एक ससुर, साधारण सा ससुर भी एक साधारण से दामाद की कितनी इज्जत रखता है। सोचिए यदि दामाद भगवान शिवजी हो किसी के, तो भरी सभा में तिरस्कार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिवजी का किया। और भगवान शिवजी उनका व्यवहार क्या था? वो तो भगवान श्री शंकरषण के समाधि में समाधस्थ थे और बिल्कुल भी भगवान शिवजी को ऐसा नहीं कि उठकर वो चले गए या दक्ष प्रजापति को तो वहां पर ही खत्म कर सकते थे। केवल करना क्या था? अपनी तीसरी आंख खोलनी थी। सोचिए भगवान शिवजी के अंदर इतनी शक्ति है कि केवल अपनी तीसरी आंख जब वो खोल लेते हैं तो काम बन जाता है, उनका और दूसरे का बिगड़ जाता है। तो केवल उनको वही करना था। और यदि उतना भी वो नहीं करते, केवल सोचते उनके पार्षद कौन कौन है, सारे भूत पिशाच, यदि उनको संकेत भी देते तो आगे चलकर उन्होंने कुछ किया दक्ष यज्ञ में, परंतु वो शिवजी अपने ऊपर अपराध लिए इसके कारण उन्हें नहीं भेजा, क्योंकि सती के प्रति अपराध किया दक्ष प्रजापति ने, तो उसके वजह से फिर दंडित दक्ष प्रजापति को किया गया। तो भगवान शिवजी ये ज्वलंत उदाहरण है कि जब कोई वैष्णव तिरस्कृत हुआ है इस तरीके से, और वो उसे कैसे लेता है अपने जीवन में। तिरस्कृता विप्र लब्धा। श्रील प्रभुपाद के भी जीवन में हम यदि देखें तो श्रील प्रभुपाद को बहुत से लोगों ने उनका तिरस्कार किया। सोचिए ऐसे वैष्णव का भी कोई तिरस्कार कर सकता है, और वो भी कोई ऐसे नहीं कि जो नास्तिक। श्रील प्रभुपाद को ऐसे लोगों ने तिरस्कार किया जो उन्हीं की तरह उनके गुरु बंधु। परंतु श्रील प्रभुपाद ने अपने अंतिम दिनों में इन सब से क्षमा मांगी कि मेरे वजह से शायद आप लोगों को कुछ अड़चने कठिनाइयां हुई होंगी। हो सकता है कि मैंने अपने गुरु महाराज का नाम उज्जवल नहीं किया। सोचिए श्रील प्रभुपाद से ज्यादा कौन भक्ति सिद्धांत के शिष्य थे जिन्होंने उनका नाम उजागर किया। तो ये एक वैष्णव का गुण तिरस्कृत जब होता है तो उसके व्यवहार कैसा होता है। विप्रलब्धा, कि जब कोई वैष्णव ठगा जाए, और इसके ज्वलंत उदाहरण है पांडव। बचपन से लेके उनके अंतिम समय तक उन्हें दुर्योधन, धृतराष्ट्र इत्यादियों ने केवल ठगा, परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद युधिष्ठिर महाराज वो दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को तो पाल रहे थे युधिष्ठिर महाराज, और जब धृतराष्ट्र को विदुर लेकर गए डांट फटकार करके, अभी तो छोड़ो इस राज्य को, युधिष्ठिर महाराज जिसको मारने का प्रयास बचपन से तुमने किया धृतराष्ट्र, और उसी के फेंके हुए टुकड़ों पर तुम जी रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो धृतराष्ट्र जब मध्य रात्रि में छोड़कर चले गए युधिष्ठिर महाराज को, तो युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे हैं। सोचिए किसके किसके लिए विलाप कर रहे हैं? धृतराष्ट्र के लिए विलाप कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। हम लोग विलाप करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति यदि हमें कुछ कह दे तो सारी जिंदगी भर भूलते नहीं कि तुमने एक बार मुझे ठगा था, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या आजकल के सारे ये टीवी के सीरियल और पिक्चरें मुझे ठगा गया, धोखा दिया गया, बदले की आग। सोचिए युधिष्ठिर महाराज यदि एक एक प्रसंग निकालें कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने क्या कुछ नहीं किया इनको ठगने के लिए, तो कितने कारण युधिष्ठिर महाराज के पास थे। परंतु इस श्लोक में कहा गया है न यस्य प्रतिकूर्वंती, कि युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्त जब वो ठगे भी जाएं तब भी न प्रतिकूर्वंती, प्रतिकार नहीं करते। शाप्ता, शाप्त कहते हैं जब श्राप किसी को दिया जाता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु को उस ब्रह्मचारी ने श्राप दिया, वो जो ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखना चाहता था, और चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया था कि केवल मेरे जो निज पार्षद हैं वो रहेंगे श्रीवास आंगन में। तो ये ब्रह्मचारी केवल जो दूध पर जीता, इसे जब वहां पर अनुमति नहीं मिली तो इसने चैतन्य महाप्रभु को श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा पूरा भौतिक जीवन नष्ट हो जाए। और चैतन्य महाप्रभु ने धन्यवाद दिया इस ब्रह्मचारी को कि इससे अच्छा वरदान और क्या हो सकता है किसी भक्त के लिए कि उसका भौतिक जीवन नष्ट हो जाए। सौबरी मुनि का उदाहरण है कि सौबरी मुनि ने गरुड़ जी को श्राप दिया। जब सौबरी मुनि यमुना में अपनी तपस्या कर रहे थे तो गरुड़ जी वहां पर आया करते थे अपना भोजन मछलियों को लेने के लिए। तो सौबरी मुनि ने गरुड़ जी को श्राप देकर वहां से भगाया और उस श्राप के वजह से सौबरी मुनि का तो पतन हुआ, वो तो निश्चित था वैष्णव अपराध की वजह से। गरुड़ जी बहुत बड़े वैष्णव, परंतु यह भी कहा गया है कि सौबरी मुनि की तरफदारी ली उन मछलियों ने और इसलिए उन मछलियों को भी मरना पड़ा, क्योंकि फिर कालिया वहां पर आकर उन मछलियों को खत्म कर दिया। तो सोचिए कि जो व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है यदि उसकी कोई तरफदारी भी लेता है तो उसकी दशा क्या होती है। ये मछलियों की दशा हुई। क्षिप्ता, क्षिप्ता कहा गया है कि जब किसी वैष्णव को दुर्लक्ष किया जाए। मुकुंद, मुकुंद दत्त का उदाहरण है कि जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में अपनी कृपा सबको बांट रहे थे तो श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु ये सभी आए और उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु, मुकुंद दत्त काफी समय से आपकी कृपा का अभिलाषी खड़ा है प्रतीक्षा में। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा उस व्यक्ति को जाकर कहो कि मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मुझसे सुनता है और जाकर मायावादियों की शरण ग्रहण करता है। तो एक हाथ से मेरी पूजा करता है और दूसरे हाथ से मुझ पर हथौड़ा मारता है, कभी इसे कृपा नहीं मिलेगी मुझे मेरी। और जब जाकर उनको पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु को फिर से याचना इन्होंने की कि क्या कभी मुकुंद दत्त को कृपा नहीं मिलेगी, तब फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कितना, 10 मिलियन, 1 करोड़, 1 करोड़ जन्मों के पश्चात हो सकता है कि मेरा दर्शन इसे मिले। और मुकुंद दत्त इतना सुनने के बाद नाचने लगे, केवल इतना सुना कि मैं देखूंगा, ये नहीं कि 1 करोड़ जन्म के बाद, देखूंगा, कभी तो देखूंगा चैतन्य महाप्रभु को। सोचिए यदि हमें कोई ऐसा कहता कि आप लोग जब करते रहो 1 करोड़ जन्म बाद हो सकता है कि 1 आंसू आंखों से निकले कृष्ण प्रेम का, 1 करोड़ जन्म तक करते रहो 16 माला, तो जो कहेगा उसी को अपनी माला देंगे, लो भाई ये माला पकड़े रहना 1 करोड़ जन्म तक, मैं थोड़ा भ्रमण करके आता हूं भौतिक संसार का। परंतु मुकुंद दत्त वो इस प्रकार के भक्त थे कि क्षिप्तता जब उनके ऊपर इस प्रकार से, और वो भी चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, जो उनके आराध्य देव, जब कोई बहुत निकट का व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है तो सबसे ज्यादा चोट तब पहुंचती है और अंततः हता प्रहलाद महाराज, कि प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास हिरण्यकश्यपु ने हर प्रकार से किया, परंतु प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी चिंतित नहीं, बिल्कुल भी द्वेष नहीं हिरण्यकश्यपु के प्रति, कण मात्र भी, लेश मात्र भी ईर्ष्या नहीं या प्रतिशोध की भावना नहीं, बल्कि इसका उल्टा। भगवान श्री नरसिंह देव से केवल एक ही वरदान मांग रहे हैं कि उद्धार करो मेरे पिता का। तो इसलिए इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्या भक्ति, यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा चाहिए तो हमें इस प्रकार का वैष्णव बनना होगा। किस प्रकार का वैष्णव? तिरस्कृता, विप्रलब्धा, शाप्ता, क्षिप्ता, हता अपि न यस्य प्रतिकुर्वन्ति तद भक्त प्रभवोपि। तो श्रीमद् भागवत का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। हमें शुरुआत करनी है सबसे पहले वो स्टैंडर्ड जानने की, कि क्या स्तर पर हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दी जा रही है। जैसे कि परीक्षित महाराज, इस भौतिक संसार में मक्खियां तो बहुत हैं, जैसे हम यहां पर भी देख रहे हैं, परंतु मधुमक्खियां बहुत कम। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, कि सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक होता है जो मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति को जानता है, पहचानता है और करता है। तो ये हमारे पर निर्भर है कि हमें इस मनुष्य जीवन में क्या अपना जीवन केवल मक्खियों के समान बिताना है, और हो सके तो यदि इस चेतना में हम मरेंगे तो हो सकेगा कि हम मक्खी बन जाएं, या क्या हमें मधुमक्खी बनना है कि जो भगवान के कमल रूपी छवि को हर समय निहारता रहे और उस अमृत का पान हर समय वो करता रहे। और यदि हमें उस प्रकार की मधुमक्खी बनना है तो हमें परीक्षित महाराज जैसे मधुमक्खी सारंग, इनके पदचिन्हों पर चलना है, श्रील प्रभुपाद जैसे, और तब जाकर हो सकता है कि हम भी एक दिन न यस्य प्रतिकूर्वन्ति तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता क्षाप्ता हता इस प्रकार के वैष्णव बन पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? देखिए, एक वैष्णव, भगवान शिवजी जैसे वैष्णव, वो जब किसी पर क्रोध करते हैं तो क्रोध का कारण होता है, एक तो जब उनकी सेवा में कोई बाधा आती है, उनके भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के प्रति जो सेवा है, जब उसमें बाधा आती है, ये कारण। और जब दूसरे व्यक्ति को सुधारने का और कोई तरीका नहीं, तो इसमें एक तो अपने आराध्य देव के प्रति सेवा भावना और दूसरे व्यक्ति के प्रति कृपा भावना, इन कारणों के वजह से कई बार देखा जाता है कि ऐसे महान भक्त भी क्रोधित दिखते हैं। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेन भुजाय, हम केवल उनकी मुद्राओं से, बाहरी तौर तरीकों से ये निष्कर्ष पर नहीं आ सकते कि उनकी भावना क्या है। और विशेष रूप से भगवान शिव जी, उनको समझना इतना आसान नहीं है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद बहुत बार बहुत अपना क्रोध उतारते थे, परंतु किस लिए, कारण क्या था? भगवान श्री कृष्ण के प्रचार हेतु, उनके सेवा हेतु, स्वयं के लिए नहीं, और या तो दूसरे व्यक्ति को उसके अनर्थों से बाहर निकालने के लिए। इसलिए एक उदाहरण दिया गया है कि जब महान वैष्णव जब वो थोड़े कठोर शब्द भी बोलते हैं तो उनके कठोर शब्द उस प्रकार से हैं कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और वो बिना चिल्लाए उठेगा नहीं, इतनी गहरी नींद में है कि जब तक चिल्लाओ नहीं तब तक वो नींद से बाहर नहीं आ सकेगा। इसलिए कई बार साधु के कठोर शब्द उस चिल्लाने के समान हैं, परंतु हेतु क्या है कि तमोगुण से बाहर निकाले अगले व्यक्ति को। तो कई बार महान वैष्णव में इस प्रकार का क्रोध दिखता है, परंतु वो श्रील प्रभुपाद कहे, उसकी तुलना प्रभुपाद ने की है कि जैसे समुद्र के ऊपरी सतह पर आप देखोगे कि लहरें बहुत उथल पुथल करती हैं, परंतु समुद्र की गहराई में जाओ तो शांत रहता है समुद्र। श्रील प्रभुपाद एक बार एम्स्टरडैम के जगन्नाथ जी के इंस्टॉलेशन सेरेमनी के बाद वहां पर सब कुछ, वो पूरा इंस्टॉलेशन सेरेमनी का ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इतना बेकार फालतू था कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए और बहुत क्रोधित अवस्था में श्रील प्रभुपाद जी चिल्ला रहे थे, टीवी कैमरा सब आए हुए थे और इनके सामने प्रभुपाद जी भक्तों पर चिल्ला रहे थे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। यहां तक कि एक हिप्पी वहां पर वो श्रील प्रभुपाद जी को देख रहा था, नया नया हिप्पी आया था मंदिर में और वो प्रभुपाद जी को कहता है चैंट चैंट हरे कृष्ण जप करो। तो बाकी भक्तों को लगा अब तो ये गया, इसको यहीं दफनाना होगा शायद आज। तो श्रील प्रभुपाद जी को जब इस हिप्पी ने कहा, इसने देखा कि सभी लोग इतने डरे हुए हैं, प्रभुपाद जी का चेहरा एकदम गुस्से में लाल, तो इसने कह दिया, इसने सुना था भक्तों से कि जब भी कोई तकलीफ हो चैंट हरे कृष्णा, तो इसने प्रभुपाद जी को कह दिया चैंट हरे कृष्णा। तो सोचिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, इसकी तरफ देखा और इसके हाथ की जो माला थी उसकी माला लेकर प्रभुपाद जप करना शुरू किए। और इसके पश्चात फिर ये सब कुछ समारोह जो ठीक प्रकार से नहीं आयोजित किया गया था, प्रभुपाद जी जब रात में अपने कमरे में जा रहे थे तो प्रसाद उनका सेवक लेकर आ रहा था, वो प्रसाद लेकर वो सेवक भी गिर गया और प्रभुपाद ने कहा कि उसे उठाकर लाओ, जो भी गिरा है वो उस पूरे मिट्टी में मिला हुआ प्रभुपाद ने उसे खाया। और फिर रात में जो प्रभुपाद जी के मालिश के लिए भक्त नियुक्त किया गया था, अब उसकी बारी थी कि उसे अब प्रभुपाद जी के कमरे में जाकर प्रभुपाद जी की मालिश करनी थी। तो उसे सभी भक्त बोल रहे थे जाओ जाओ, और उसकी स्थिति ऐसी थी मानो कि उसे शेर के पिंजड़े में भेज रहे हैं कोई। परंतु जब ये भक्त प्रभुपाद के कमरे में उन्होंने झांक कर देखा स्थिति का मुआयना करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी अपने पलंग पर अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को बांधे हुए, जैसे कि कई बार बच्चे करते हैं, और पलंग पर वो लोट रहे थे और लोटते हुए प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे जय गौर निताय जय गौर निताय। तो ये भक्त, अब थोड़ी हिम्मत आई कि प्रभुपाद जी थोड़ा अच्छा मूड भी लगते हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो जाकर प्रभुपाद जी से पूछते हैं प्रभुपाद जी अभी कुछ मिनट पहले आपका दूसरा रूप, हमें लगा कि नरसिंह भगवान अवतरित हुए, आपका ऐसा उग्र रूप हमने देखा और अभी मैं देख रहा हूं कि आप जय गौर निताय का कीर्तन करते हुए एक बच्चे के समान अपने पलंग पर लौट रहे हैं, तब प्रभुपाद ने कहा, एन ओशन माइट अपीयर टर्बुलेंट ऑन द सर्फेस लेवल बट वेन यू गो डीप विद इन इट इज काम। और ये बोलकर फिर से प्रभुपाद जय गौर निताय जय गौर निताय का कीर्तन जारी रखे। तो एक भक्त भगवान शिव जी के विषय में तो क्या कहे। तो इसलिए हम कोई निष्कर्ष पर नहीं आ सकते, खाली यही निष्कर्ष पर आना है कि जो भगवान का निष्कर्ष है ऐसे भक्तों के प्रति, और वो क्या है, भागवत में कहा गया, वैष्णवानाम यथा शंभु। और कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।